नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्री साधि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन महाराज की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। सुमेध भक्त वृंद की जय। गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदीवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितास्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जय मुदीरे। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम नौम स्कंध अध्याय 20। 20 अध्याय का शीर्षक है पुरु का वंश। श्लोक संख्या 36। इसके पहले दो श्लोक हैं, उसको मैं पढ़ लेता हूं, तत्पश्चात हम लोग पुनः इस श्लोक पर आएंगे। तस्या नृप वैधर्भ्य पत्न्यस्तिरासु सम्मताः जघ्योस्त्यागा भयात् पुत्रात् अनुरूपा इति रीते। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, महाराज भरत की तीन मनोहर पत्नियां थीं जो विदर्भ के राजा की पुत्रियां थीं। जब तीनों के संतानें हुई तो वे राजा के समान नहीं निकले। अतएव इन पत्नियों ने यह सोचकर कि राजा उन्हें कृतज्ञ रानियां समझकर त्याग देंगे, तो उन्होंने अपने पुत्रों को मार डाला। तस्यैवं वितते वंशे तदर्थं यजतः सुतं मरुतो मेन मरुतो भरद्वाजम् उपाददुहे। संतान के लिए जब राजा का प्रयास इस तरह विफल हो गया तो उसने पुत्र प्राप्ति के लिए मरुत अस्तोम नामक यज्ञ किया। सारे मरुदगण उसे पूर्णतया संतुष्ट हो गए तो उन्होंने उसे भरद्वाज नामक पुत्र उपहार में दिया। 36 श्लोक। अंतर्वत्न्याम भ्रातृपत्न्याम अंतर्वत्न्याम भ्रातृपत्न्याम मैथुनाय बृहस्पति प्रवेदितो वारितो गर्भम प्रवेदितो वारितो गर्भम सत्वावरियम उपासृजत सत्वावीर्य उपासृजत अंतर्वत्न्याम भ्रातृपत्न्याम मैथुनाय बृहस्पति प्रवीरितो वारितो गर्भम सप्तवाब्रियम उपासृजा अंतर्वत्न्याम भ्रातृपत्न्याम अंतर्वत्न्याम भ्रातृपत्न्याम मैथुनाय बृहस्पति प्रवीरितो वारितो गर्भम सप्तवाब्रियम उपासृज। कोई वैष्णवी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य शब्दार्थ अंतःवत्न्याम गर्भवती भ्रातृपत्न्याम भाई की पत्नी से मैथुनाय संभोग की इच्छा से बृहस्पतिः बृहस्पति नामक देवता प्रवीरता है प्रवीरत वारिता है मना किया गया गर्भम गर्भ के भीतर के पुत्र को सप्तवा साप देकर वीर्यम वीर्य उपासृजत अस्खलित किया अनुवाद। बृहस्पति देव ने अपने भाई की पत्नी ममता पर मोहित होने पर उसके गर्भवती होते हुए भी उसके साथ संभोग करना चाहा। उसके गर्भ के भीतर के पुत्र ने मना किया, लेकिन बृहस्पति ने उसे शाप दे दिया और बलात् ममता के गर्भ में वीर्य स्थापित कर दिया। अनुवाद। इस संसार में संभोग की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि देवताओं के गुरु तथा प्रकांड पंडित बृहस्पति ने भी अपने बड़े भाई की गर्भवती पत्नी के साथ संभोग करना चाहा। जब उच्चतर देवताओं के समाज में ऐसा हो सकता है तो मानव समाज के विषय में क्या कहा जाए। संभोग की इच्छा इतनी प्रबल है कि बृहस्पति जैसा विद्वान भी विचलित हो सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रस्तुत श्लोक में माया की प्रबलता का वर्णन किया गया है। भगवान की माया कितनी प्रबल है, जो बड़े बड़े ज्ञानियों को, गुरुओं को भी पछाड़ देती है। बृहस्पति जी ये देवताओं के गुरु हैं। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा के पुत्र हैं। बृहस्पति जी के बड़े भाई का नाम उतत्य था और बृहस्पति जी छोटे भाई थे। ये दो भाई थे। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान की माया की ऐसी प्रबलता है, गुरु हो चाहे चेला कोई भी हो, वो किसी को भी पछाड़ सकती है जिसके नियम और संयम में दृढ़ता न हो। जो पत्नी गर्भवती है, जिनका नाम ममता है, बृहस्पति जी के बड़े भाई उतत्य जी, जबरदस्ती, तो माया कितनी प्रबल है। गीता में भगवान कहते हैं, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंती थे। मेरी माया बहुत बलवान है। जैसे ये बृहस्पति जी हैं, बृहस्पति जी की पत्नी का नाम है तारा। इनकी भी पत्नी के साथ चंद्रमा ने संभोग किया था। जिससे बुद्ध की उत्पत्ति हुई थी। चंद्रमा द्वारा तारा का अपहरण किया गया था। ब्रह्मा जी शिव जी बीच में पड़े, समझौता हुई, फिर लौटा दिए पत्नी को। ये माया की प्रबलता है। अच्छा, जब बृहस्पति जी ममता के साथ जबरन भोग किए तो ममता के गर्भ में जो बालक था उसने मना किया कि आपको ये कर्म नहीं करना चाहिए, तो उसको अभिशाप दे दिए। देखिए काम मनुष्य को अंधा बना देता है, काम का इतना वेग होता है कि मनुष्य को अंधा बना देता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भीतर से लड़का बोल रहा है मेरी मां के साथ उपभोग मत करो, लेकिन फिर भी वो नहीं मान और अभिशाप दे दिए तो अंधा हो जा और अपना काम बना लिए। तो उससे जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम हुआ भरद्वाज, जो वेद मंत्र दृष्टा ऋषि भरद्वाज। भरद्वाज जी का नाम आप सभी सुने, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयाग में रहते थे। याज्ञवल्क्य जी का, भरद्वाज जी का बहुत सुंदर प्रसंग है रामायण में भी। भरद्वाज का जन्म हुआ, जब उस बालक का जन्म हुआ तो ममता ने कहा कि इसका भरण पोषण करें। कहा मैं क्यों करूं, तुम करो। पहले शब्दों का अर्थ सुन लें। भर द्वाज, भर का अर्थ होता है भरण पोषण करना, और द्वाज का जो अर्थ होता है दो आदमी का संयोग। ममता इनके बड़े भाई की पत्नी थी और छोटे भाई हुए। क्षेत्र है बड़े भाई का और भरद्वाज ने ममता के घर में बीज स्थापित किया, तो ऐसे संयोग से, अवैध संयोग से जो बालक उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे बालक को, ऐसे पुत्र को दोगला कहा जाता है। दोगला शब्द बहुत प्रसिद्ध है, माताएं कभी कभी क्रोधित होती हैं तो दोगला उस शब्द का प्रयोग करती है। दोगला जो पिता का रियल संतान न हो, किसी दूसरे का हो। क्षेत्र है उनका, पत्नी है उत्तत्य की, लेकिन वृज किसका है, दूसरे का, बृहस्पति जी का, उसको औरस पुत्र कहा जाता है। तुम पालन करो, तुम पालन करो, दोनों ने किसी ने नहीं किया। ममता को भय था मेरा पति को जानकारी हो जाएगी मुझे बहुत भर्सना करेंगे, कुछ भी कर सकते, इसलिए डर से दोनों त्याग दिए चले गए। और भरद्वाज जो बालक था इसी पड़ा रहा। तो मरुदगणों ने, जो मरुदगण देवता है, मरुदगणों ने उस बालक का भरण पोषण किया और उस बालक का नाम रखा भरद्वाज। भर माने भरण पोषण करना, द्वाज मतलब जो दो व्यक्ति के संयोग से उत्पन्न। तो भरद्वाज उनका नाम पड़ा, तो मरुदगणों ने नाम रखा। बृहस्पति जी और ममता दोनों छोड़ते, और जैसे विश्वामित्र जी का और मेनका का संयोग हुआ, आपस में समागम हुआ, तो उनसे कौन पुत्र उत्पन्न हुई थी, शकुंतला। और शकुंतला का ही पुत्र भरत हुए, जिनका यह प्रसंग चल रहा है। वो भी दोनों छोड़कर चले गए। शकुंतला आया, एक वैष्णवी है, और एक वैष्णव पुत्र को जन्म दिया। तो अभी अभी आप सुने कि भरत जी, भरत महाराज की तीन मनोहर पत्नियां थी, 34 श्लोक में वर्णन है, ये तो 36 है, जो विदर्भ के राजा की पुत्रियां थी। जब तीनों के संतानें हुई तो राजा के समान नहीं निकले, अतः इन पतियों ने यह सोचकर कि राजा उन्हें कृतज्ञ रानियां समझकर त्याग देंगे तो स्वयं वो बच्चों को मार डाले। तो अब महाराज जो भरत हैं ये बिल्कुल निसंतान रह गए। समय में परिवर्तन हुआ, संतान के लिए बहुत प्रयास किए, निसंतान रह गए भरत महाराज अभी तक। उसके लिए उन्होंने मरुत्सोम नामक यज्ञ भी किया। यज्ञ में मरुद्गण देवता प्रसन्न हो गए जो उस बालक भरद्वाज जी का पोषण किए थे और वही नाम रखे थे भरद्वाज। जब यज्ञ से प्रसन्न हो गए तो उस भरद्वाज नामक बालक को उपहार के रूप में वे भरत जी को प्रदान कर दिए। तो इसके बाद है ये श्लोक है, इसमें यह दर्शाया गया है कि भगवान की माया बहुत प्रबल होती है जो किसी को भी पछाड़ सकती है। तो जो माया है दुर्गा मैया महामाया, महामाया का तीनों लोकों पर राज है, पाताल लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक, भूलोक स्वर्ग। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। माया पछाड़ती है, क्यों माया पछाड़ती है प्रश्न उठता है, माया क्यों पछाड़ती है? इसका उत्तर यह है कि यह जो जगत है तीनों गुणों से रचा गया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जितने भी इस संसार के प्राणी हैं पाताल लोक भूलोक स्वर्ग लोक तक, इस सब माया के द्वारा रचे गए हैं और तीनों लोकों के ऊपर माया का प्रभाव है। तो माया तीनों लोकों के लोगों को पछाड़ती है और भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं। गीता में भगवान बोलते हैं ना, नैस्त्रय गुण भवार्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो, विशुद्ध सत्व में आओ। तो जो तीनों गुणों के अंदर रहते हैं उन्हें माया पछाड़ देती है, ऐसे नहीं पछाड़ेगी। अहंकार हो जाता है लोगों को, माया साक्षात स्त्री है, स्त्री को भगवान ने निर्माण किया तो उसमें अधिक सौंदर्य का अधिक सौंदर्य की रचना किया। 16 आना में 8 आना नारी को भगवान ने दिया। नारी के शरीर का ऐसा हटन गठन होता है जिसको देख करके लोग लुलुप हो जाते हैं। बृहस्पति जी गुरु हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी इनको माया पछाड़ दी। वेद व्यास जी लिखते हैं महाराजाति के प्रसंग में, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रोवा ना विवक्त सनो भवेत बलवान इंद्रियो ग्राम विद्वांसम अपि करस्यति। इंद्रियां बहुत बलवान होती, वो विद्वानों केम बुद्धि को भी हर लेती है। किस विद्वान की बुद्धि को हरेगी? किसी को भी। सुंदरता एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को अंधा बना देती है। मनुष्य अंधा हो जाता है, जैसे पतिंगा प्रकाश को देखता है, जलते हुए दीपक को देखता है, लौ को देखता है, तो अपने को भूल जाता है और प्रकाश के ऊपर आक्रमण करता है, उसको उसके पंख झुलस जाते हैं, माने अपनी प्राणों को गंवा देता है। दीप शिखा तन ज्योति मना मनजन हो ही पतंग, दीपक की जो सिखा है लौ है, पतिंगा को बहुत प्रिय लगता है, कहने का भाव यह है कि कामी नारी प्यारी जी में कामी व्यक्ति को स्त्री बहुत प्रिय होती है, लोभ ही प्रिय जिमेदाम, और लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। बाबा तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को धन प्रिय लगता है, वैसे आप हमें प्रिय लगिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो काम जो है, काम की जो संरचना है, भगवान ने प्रत्येक जीव के अंदर किया है, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नवचर हो। संसार में जितने प्राणी हैं, सबके अंदर काम की प्रबलता है, काम का वेग है, लेकिन जो वासना है वो सुसुप्त रहती है। सबके अंदर काम है, सुसुप्त रहती है। जैसे हम लोग यहां पर बैठे हुए, अभी आपकी जो वासना है सुसुप्त है, माने सोई हुई है, लेकिन जब ही आप गंदे चित्रों को देखेंगे, अश्लील चित्रों को देखेंगे, देखते ही आपका मन दूषित हो जाएगा, और जो सुसुप्त चेतना है वो चेतना जागृत हो जाती है, और आप कुमार प्रभाव देने लगते हैं। तो काम का अगर भगवान निर्माण न करें तो फिर संसार की सृष्टि होगी ही नहीं। संसार का विस्तार होगा ही नहीं। ब्रह्मा जी को काम ये सौंपा है, ठीका ब्रह्मा जी लिए हैं, तीन ठेकेदार, सबके अंदर काम है लेकिन उसे सुप्त है, समय पाकर के वो जागृत हो जाती है। तो कहने का भाव यह है, जैसे बृहस्पति जी, हाँ, तीन मनुष्य के तीन शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, जिसे गीता में बोलते हैं ना, त्रिविधा नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोधस्त तथा लोभस्त अस्मात् एत त्रयम् त्यजेत। नरक के तीन दरवाजे हैं, काम क्रोध और लोभ। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। भगवान ने जो चार आश्रम बनाया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण और आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, सबके अंदर काम का संचार है, लेकिन यदि मर्यादा में रहकर इसका पालन करेंगे, भगवान कहते हैं ना, कामो अस्मि भर्तृसव, वो काम मैं हूं। चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो या सन्यासी, कोई भी हो, आप अपनी मर्यादा में रहें। यदि मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो आपको दंडित होना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सन्यास लेंगे तभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मचारी रहेंगे तो नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जनक, जिन्हें विदेह कहा जाता है, उनकी देह में कोई आसक्ति नहीं थी। महाराज अम्बरीश उच्च कोटि के भक्त थे, भगवान ने उनकी सेवा में चक्र सुदर्शन रख दिया था, जिनके आगे दुर्वासा जैसा जोगी भी प्रस्त हो गया। आप किसी भी आश्रम में रहकर यदि आप मन पर कंट्रोल कर रखेंगे, मन को सीमित रखेंगे, तो आप माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का मन है, गीता में भगवान कहते हैं, मन जैसा कोई मित्र नहीं, मन जैसा कोई शत्रु नहीं। तो अपने मन को कौन समझाएगा, आप ही समझाएंगे ना। लेकिन माया को देखते ही मनुष्य का मन में विकार आ जाता है, रजोगुण में आ जाता है, तमोगुण में आ जाता है, अंधा बना देता है। उदाहरण के लिए बड़े बड़े ज्ञानी नारद जी तो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। विष्णु मुनि को देखकर नारद जी भी भ्रमित हो गए और भगवान की माया ने थोड़ा समय के लिए उन्हें बंदर बना दिया। नारद जी को बंदर का मुखड़ा भगवान दिए थे, बनाए थे ना थोड़ा समय के लिए, इस कथा को आप सभी जानते, थोड़ा समय के लिए बंदर बन गए क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे, अपने स्वरूप को भूल गए, जो कि कामदेव पर विजय प्राप्त किए थे कि मैंने कामदेव को जीत लिया। जो भगवान का नाम जपते हैं, सुमिरत हरि श्राप गतिवादी, जिनको दक्ष का अभिशाप था, तुम कहीं भी अधिक देर तक नहीं टिक सकते हो, चलते रहो, ना रुकोगे ना मेरे पुत्रों को बैराग का उपदेश दोगे। दक्ष ने ऐसा अभिशाप दिया था, लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि दक्ष का अभिशाप विफल हो गया, नहीं काम किया। हिमालय की तलहटी की सुंदरता को देखकर, प्रकृति की छटा को देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए और कहे, अरे तो तपस्या करने लायक जगह है। भगवान का स्मरण किए, सुमिरत हरि हिसाप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरन किए, हरे कृष्णा सुमिरन किए तो दक्ष का साप अभिशाप काम नहीं किया, रुक गया और वहां पर वो तप किए, मन को भगवान में लगाए। कामदेव अपनी माया का संचार किए, कामदेव एक देवता है, इंद्र उन्हें विदा करता है, जाओ इनकी तपस्या भंग करो, कहीं अपने तप के प्रभाव से मेरा स्वर्ग ने छीन ले। इंद्र ने माया का संचार किया, नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, काम पर विजय प्राप्त कर ली। कामदेव तो उनसे डर गया बिल्कुल, तो काम पर विजय प्राप्त करके जब लौटे तो शिव जी के पास आए और शिव जी से कहे कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है, कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो शिव जी ने कहा, बहुत सुंदर बात है, शिव जी महान वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम कथा, महान वैष्णव है। शिव जी ने कहा कि देखिए, आप भूल करके भी इस बात को जो बोल रहे हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, कहीं भगवान के पास जाकर के मत कहना। लेकिन नारद जी नहीं माने, आखिर शिव जी ने तो माना किया ना, लेकिन उनकी बात नहीं माने और इतनी उतावली उनको हो गई कि वो वैकुंठ गए और भगवान से बोले, रूम मैंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया आपकी कृपा से, मेरा कुछ नहीं कर सका। तो भगवान ने देखा कि ओ, इनको गर्व हो गया है, अभिमान है, शिव जी ने माना किया फिर भी ये नहीं माने, तो वैष्णव अपराध हो गया ना, वैष्णव अपराध हो गया। तो इसलिए नारद जी विष्णुमोहिनी को देख करके, जो कामदेव पर विजय प्राप्त किए थे, भगवान ही विष्णुमोहिनी बने, नगर रच दे अपनी माया से, नारद जी देख करके भूल गए जो काम पर विजय प्राप्त किए थे, कामदेव पर भूल गए विष्णुमोहिनी को देख करके। तो ये वैष्णव अपराध किए, शिव जी ने माना किया ऐसा मत करिएगा, लेकिन नारद जी ने ऐसा कर दिया। तो एक वैष्णव अपराध भी मनुष्य को पतन में डाल देता है। भगवान ने उनकी तो रक्षा कर ली, स्वयं विष्णुमोहिनी बने, लेकिन नारद जी को तो पाठ पढ़ा दिया। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को उसी तरह रक्षा करता हूं जैसे बालक अपने पुत्र की रक्षा करती है, करूं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। वहां समझाया उसने, भगवान ने समझाया, नारद जी आप किसके साथ विवाह करने जा रहे थे, विष्णुमोहिनी मैं बना था, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी हमारे पुत्र हैं और उनके पुत्र हैं, नाती हैं, तो क्या दादी से आप विवाह करेंगे? समझाए, आप ब्रह्मचारी हो, आपको विवाह नहीं करना चाहिए, आपको मेरे ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। नारी बसंत ऋतु के समान होती है और ग्रीष्म ऋतु के समान होती है, दोनों बात बताए। अगर सुंदर नारी कहीं भी रहेगी तो वहां जो भी कर्मी रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, उनको उत्साह उमंग रहता है, बसंत ऋतु छा जाती है, और सुंदर नारी जो भी कहेगी उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए कामी व्यक्ति तैयार रहते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है उसमें, क्योंकि माया है। नारद जी को भगवान ने मना किया, वसंत ऋतु के समान है, जहां भी रहती है वहां देखकर कोई व्यक्ति प्रसन्न हो जाता। जैसे आजकल ऑफिस में देखिए सुंदर सुंदर अप्सराओं को रखते, किसके लिए? हमारा ऑफिस का कार्यक्रम बढ़िया से चले, हंसकर बतियाओ। जो हंसी है वो भगवान की मोहिनी माया है, जबकि शास्त्रों में ये आदेश दिया गया है कि जननी समझाने पर नारी, दूसरे की स्त्री को मां के सदृश देखो। यह है प्रभुपाद जी की शिक्षा, चेतन महाप्रभु की शिक्षा। किसी भी स्त्री को उनको मां की तरह देखो, जैसे आप अपनी मां को मां मानते हो वैसे दूसरी की पत्नी को भी मां मानो। अपनी मां के प्रति किसी की भी दूषित भावना नहीं होती है। हम लोग का श्री कृष्ण भावनामृत संग है, मतलब अपने अपनी भावना को अमृतमय बनाओ, दूषित मत रखो, शुद्ध रखो। इसलिए स्कान में माता जी बोला जाता है। वाल्मीकि जी से राम जी से भेंट हुई तो वाल्मीकि जी से राम जी ने कहा मुझे रहने के लिए स्थान बताइए, 14 स्थान बताया, उसमें ये भी एक स्थान है, जननी समझाने प्रणारी। जो व्यक्ति एक दूसरे की स्त्री को मां के सदृश जानता है, हे प्रभु आप उसके हृदय में निवास करें। लेकिन माया कितनी प्रबल है, हमारे वैष्णव गण गाते हैं कि मानुष जन्म पैया और राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खैनु। वो जानते हैं कि जानते हैं, उनको मालूम है कि ये माया है, प्रबल है, लेकिन फिर भी माया के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नियम में दृढ़ता नहीं है, उनके संयम में दृढ़ता नहीं है, गुरु के आदेश को भूल गए। गुरु ने तो कहा कि मां जानो, चेतन महाप्रभु का आदेश है मां जानो। जैसे नमाचार्य हरिदास ठाकुर, उनके पास भी तो वेश्याएं आई थी, दुष्ट ने विदा किया था, लेकिन वो वेश्याएं तो फेल हो गई, और नमाचार्य हरिदास ठाकुर जी पूरी अपने जप में एकदम बिल्कुल दृढ़ रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। 3 दिनों के अंदर उसकी चेतना ही बदल गई, वो वेश्या भक्त बन गई। सोचिए नामो से दृढ़ होना चाहिए ना। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं अध्याय में, सत्तम कीर्तियंतो माम यतंतश्च दृढ़ व्रता। दृढ़ व्रतधारी बन करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भागवत में वर्णन है, यदि आप ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, और आपकी मन को किसी स्त्री ने चुरा लिया, खींच लिया, तो आपके ब्रह्मचर्य में, आपके ब्रह्मचर्य में, मैंने मान लो कि आपके जीवन को अधिकार है। आप कैसे ब्रह्मचारी हैं जो कि आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाए? अगर किसी कोई स्त्री चुरा लेती है आपके मन को, तो उस ब्रह्मचारी को, उस सन्यासी को धिकारा गया कि तेरे तप में कोई दम नहीं है। दृढ़ व्रतधारी बनो, ध्रुव प्रहलाद जैसे बनो, नमाचार्य हरिदास ठाकुर जैसे बनो। यदि वैसे कोई दृढ़ रहेगा तब कोई माया पर विजय प्राप्त कर सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं। जिनके संयम कमजोर हैं उसको माया पछाड़ देगी। माया बहुत बार परीक्षा लेती, क्योंकि वो प्रबल है। एक चीज को आप याद रखिए, जैसे सन्यासी लोग जाते हैं ना, हमारे इस्कॉन का ऐसा नियम है, सन्यासियों को विदा किया जाता है विदेश भ्रमण करने के लिए, आप जाइए, लेकिन उनकी परीक्षा ली जाती है, भले उनको मालूम हो चाहे ना हो, लेकिन उनके पीछे लोग लगे रहते हैं, यहां से बैठे बैठे सब देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं वहां पर। आपके पास स्त्री जाएगी, उसमें वो सफल हो रहे हैं कि असफल हो रहे हैं? परीक्षाएं आती हैं। हम लोग सब वैष्णव है, हमारा प्रचार केंद्र है, हैं? और वैष्णवी आपके साथ में है, और मिलजुल करके प्रचार करना है, सबको सम्मानित करना है, तो हम सभी को अपने मन को मर्यादा में रख करके प्रचार प्रसार करना है। बताएं वे वैष्णवी है, उनको माँ की सदृश जानिए, और मिलजुल करके भगवान का प्रचार करिए, बहुत सुंदर प्रचार होगा। कहीं हम लोग के कहीं संग में ऐसा ना, मतलब कलंकित ना हो जाए, बचना चाहिए, यही तो शिक्षा दी जाती है। ऐसा कहा गया है कि नारी तो साक्षात माया है, माने भगवान को भूल जाना ही माया है। माया का शाब्दिक अर्थ भ्रम होता है,
जो माया के बहुत से अर्थ होते, कृपा भी होती है, भ्रम भी होता है। जो वस्तु हमारी नहीं है उसको हम अपना मानते हैं। आपने सुना है ना, मां माने नहीं, मां माने नहीं, या माने जो जो नहीं है उसको माया बोलते हैं। हम लोग खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, जन्म हुआ तो खाली हाथ आए और मरेंगे भी तो खाली हाथ जाएंगे, तो बीच में आपकी वस्तु कहां से हो गई? तो जिसके लिए आप क्या कहते हैं, वस्तु मेरी है, ये पत्नी मेरी है, मैं और मोर तोड़ते माया जही बस किन्ने जीव निकाया। मेरा तेरा यही तो माया है, भगवान को भूल गए और देह में आसक्त हो गए। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी माया। माया भगवान की दासी है, माया भगवान की दासी है, भगवान की शक्ति है, उसको वही कार्य दिया गया है। लेकिन माया और भक्ति दोनों स्त्री है, माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। तो एक माया बंधन में डालने वाली है और दूसरी जो माया है, अंतरंगा शक्ति, योग माया, भक्ति महारानी है, वो बंधन से छुड़ाने वाली है। जब काकभूषुंडी जी को राम जी ने ऐसे हाथ में पुआ लेकर के इसे देने को हुए, काकभूषुंडी जी आए और पुआ छीनकर भाग गए। राम जी ने उनका पीछा किया, वो भागते गए भागते गए भागते गए, दो अंगुल की बीच की दूरी थी केवल, बस भागते गए। लेकिन वो देखे किए थे, देख करके आंखें बंद की, फिर अपने को पाए, कह रहे हम तो अयोध्या में ही। वो भगवान भगवान के उत्तर में देखे, भगवान के मुख में प्रविष्ट हो गए और देखे अंदर, क्या देखे? देखा जीव नचा वही जाई, देखी भक्ति जो छो रही पाई। माया जगत को नचा रही है और भक्ति, जो भक्ति के शरण में आते हैं, वो भक्ति महारानी छट छट उनको बंधन से मुक्त कर रही है, छांट रही है। तो भक्ति महारानी की जो अनुगामनी स्त्री है, वो तो समझिए साक्षात अंतरंगा भगवान की शक्ति है, भक्ति महारानी है। तो उनकी कृपा से आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो जोग जो महामाया है, दुर्गा जी हैं, ये तो बंधन में डालती हैं। इनका नाम ही है दुर्गा, भगवान ने दुर्गा नाम रखा है। दुर्गा माने किला होता है, जो जन्म मृत्यु के किले में बंद करके रखती है, संसार से बिलक विमुख कराना, माने भगवान के चरणों से विमुख कराना, ये महामाया का कार्य है, दुर्गा जी का काम। और भगवान के चरणों से संलग्न रखना, ये भक्ति महारानी का कार्य है। तो भक्ति महारानी की जो अनुगामनी मताएं हैं और वो जिनकी पत्नी बनी है, उनका जीवन धन्य है। देखिए गृहस्थ जो है, पति पत्नी, वो सब मिलजुल करके भगवान की भक्ति करते हैं, करते हैं कि नहीं? और बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं जो कि वो जप नहीं करती है, क्यों कंठी पहने हो, क्यों मंदिर जाते हो, मत जाओ, मना करते हैं। तो समझ जाना चाहिए वो माया माया की अनुगामनी है, वो बंधन में डालने वाली है। तो माया बहुत प्रबल है, माया में अधिक सुंदरता है और माया में सुंदरता का अधिक वोल्टेज है। जैसे चुंबक लोहा को खींच लेता है, वैसे स्त्री पुरुष के मन को खींच लेती है। जिसको जो संयम, जिनके नियम में दृढ़ता नहीं है, उनका पतन हो जाता है। आगे देखिए, अपराध तो मेन कारण होता है। सबरी मुनि एक मुनि थे, तपस्वी थे, जमुना जी में रहकर तपस्या करते थे। जब गरुण जी जो भगवान के भक्त हैं आए, तो एक मछली, नर और मादा आपस में संभोग कर रहे थे और गरुण जी आए, तो गरुण जी का तो आहार है, उसको खा गए। तो इसने अभिशाप दे दिया सबरी मुनि ने कि तुम फिर यहां कभी नहीं आ सकते, आओगे तो मर जाओगे। तो एक वैष्णव के प्रति उनका आहार था, वो खा रहे थे, अपराध हो गया गरुण जी के प्रति सौभरी मुनि का आश्री, मतलब अपराध लग गया। और वो सौभरी मुनि जो तप कर रहे थे, वो मंधाता की 50, मंधाता एक राजा थे, उनकी 50 कन्याएं थी, उनकी 50 कन्याओं के साथ विवाह किया, उनसे सौभरी संप्रदाय चला सौभरी मुनि के, बहुत से उनके पुत्र हुए। बाद में पुनः हुए सब कुछ छोड़ करके फिर भगवान की भक्ति किए तो भगवत धाम गए। तो अपराध से हम सबको बचना चाहिए, वैष्णव अपराध है, नमा अपराध है, धमा अपराध, उससे भी पतन हो जाता है। आगे देखिए, काम को कहा गया है कि काम एक प्रकार का वेग है। आप कहेंगे कि काम को भगवान ने क्यों बनाया? आप बोले काम को भगवान ने क्यों बनाया? अगर काम न हो तो इस संसार की सृष्टि नहीं होगी। काम तो सबके अंदर है, लेकिन मर्यादा में रहो ना। रावण जैसा, हिरण्यकश्यपु जैसा मत बनो, मर्यादा में रहो। क्या रावण के पास स्त्रियां नहीं थी? मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी, उसके पास नारियों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सीता जी का किडनैप किया, अपहरण किया। तो अपहरण किया तो परिणाम क्या हुआ? अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो परिणाम क्या आएगा? मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जैसे रावण का जीवन पड़ गया, वो सीता जी को किडनैप किया, तो परिणाम क्या हुआ? मंदोदरी ने कहा कि आप काल, अपने काल को यहां अपहरण करके लाए हैं, ये आपकी मृत्यु के कारण बनेगी, इसलिए इसे लौटा दीजिए, इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो पूरा खानदान चौपट हो जाएगा। लेकिन रावण नहीं माना। नारी आंख भगवान ने दिया, बोलेंगे आंख भगवान ने किस लिए दिया? देखने के लिए। ठीक है, देखने के लिए दिया है तो भगवान ने कैसे देखना चाहिए इसकी विधि भी तो भगवान ने बताया है ना। कोई सुंदर स्त्री देखे, मुस्काए तो बस इतना ही समझ जाइए ये भगवान की मोहनी माया है, बस प्रणाम करके निकल जाइए। नारी निरख ही ने देखिए, निरख ही ने कीजिए ठौर, देखे ही ते बिस चढ़े, मन आवे कुछ और। कोई नारी पर ऐसे ठीक है आपकी दृष्टि पड़ गई और आप ठहर करके देखने लगे, तो ठहर कर आप देखेंगे तो उसका कुछ और परिणाम होगा। आपके मन में बिस की भावना आ जाएगी, आप सोचेंगे इसे मैं आलिंगन कर लूं, वो कर लूं, ये बाप की भावना दूषित हो जाएगी। नारी निरखी ने देखिए, निरखी ने कीजिए ठहर, देखे ही ते बिस चढ़े, मन आवे कुछ और। आपके मन में कुछ और भावनाएं आ जाएगी। देखना है ठीक है, मां के दृष्टिकोण से देखिए ना। हम लोग की तो परंपरा में ये शिक्षा दी जाती है ना, मां के दृष्टिकोण से देखिए, आपकी भावना बिल्कुल सही रहे। जो भी मां की दृष्टि से देखते हैं वो बिल्कुल सही रहते हैं। भक्त तो बहुत से हैं, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन कोई मर्यादा में रहता है, कोई मर्यादा का उल्लंघन कर देता है। परनारी पैनी छुरी, मत कोई लाओ अंग, रावण के दशशीस गए परनारी के संग। दूसरे परनारी पैनी छुरी, दूसरी की जो स्त्री है वो छुरी की धार के समान है, यदि उसको अपनाने का प्रयास करोगे, जैसे रावण का दसों शिष्य चला गया, वैसे तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए मर्यादा में रहो, विवाह करके रहो। अगर नहीं ब्रह्मचारी रहना है, रहा जाता है तो आप विवाह करके रहो। सन्यासी नहीं रहा जाता है, फिर सन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इंद्रियां यदि कंट्रोल में नहीं है, आपके अंदर काम की अधिक प्रबलता है, नहीं रहा जा रहा है, तो विवाह कर लीजिए। माया बहुत प्रबल है। बैरागियों के साथ रहेंगे तो बैराग आएगा, इतना याद रखिएगा। भोगियों के साथ में रहेंगे तो क्या? भोग करने की इच्छा जागृत होगी। इसलिए बैरागी को बैरागियों के संग रहना चाहिए। और काम है क्या? भगवान ने काम का संचार किया है, लेकिन याद रखिए, काम एक प्रकार का वेग है। वाचो बेगम मनस क्रोध बेगम जिहवा बेगम उदरुपस्थ बेगम। काम एक प्रकार का वेग है, आवेश है। काम एक प्रकार का आग है जो मनुष्य को जला डालता है। इसी को तो जो कंट्रोल करेगा वही तो गुरु बन सकता है। कैसे कंट्रोल करेंगे? उसी के लिए भगवान बोलते हैं कि अपने नियमों का पालन करो, दृढ़ता पूर्वक पालन करो और एक दूसरे को मां समझो। काम कहां से उत्पन्न होता है? भगवान ने गीता में कहा रजोगुण से उत्पन्न होता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुजायतो, इंद्रियों विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आप किसी स्त्री का चिंतन करेंगे, या बेड पर गए आप सो रहे हैं बिल्कुल, और आपकी स्त्री का चिंतन हो रहा है, तो आपके मन में एक उत्तेजना आएगी जो आपके शरीर में हलचल मचा देगी। चिंतन करने से उत्तेजना आती है, जैसे बोला गया है ना, जैसे राम जी तो अयोध्या में थे और भरत जी कहां थे, अपने ननिहाल ननिहाल में थे कश्मीर, लेकिन चिंतन से अपने भाई की रक्षा करते थे। भरत जी वहां से चिंतन करते थे। कछुआ अपने चिंतन से अंडे को से लेता है, बालू की रेत में उसका अंडा रहता है, लेकिन चिंतन में इतनी शक्ति है तो चिंतन से आपको उत्तेजना आती है। यदि उसी चिंतन को हम भगवान में हम लोग लगाएंगे तो उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति आती है। आपकी इंद्रियों में हलचल वो चेतना मचा देती है। तो उसी प्रकार से भक्ति रस में यदि हमारी चेतना रहेगी और भगवान का चिंतन, भगवान में मन लग जाएगा, घंटों आपका समय बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा कि आप कहां हैं। इसमें अभ्यास की जरूरत है। ध्रुव जी 6 महीने में प्राप्त कर लिए। देखिए उनकी तपस्या कितनी कठिन तपस्या थी। पत्ता को छोड़ दिए, हवा को छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, जल को छोड़ दिए, अंत में श्वासा को भी रोक दिए। तहलका मच गई सारी दुनिया में। हवा पीना भी छोड़ दिए, देवताओं की श्वासा रुकने लगी। सोचिए, तब ब्रह्मा जी गए, तब भगवान गए उनके पास और उनको मन को शांति प्रदान की। भगवान का सिंहासन डोल गया उनके चिंतन से। चिंतन का इतना बड़ा प्रभाव है। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना बहुमत भक्तो, अपने मन को मुझ में लगाओ। बार बार बोल रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे अचेत हैं कि अपने मन को ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो काम एक प्रकार का आग है, विज्ञ है, जो मनुष्य को जला डालता है। जैसे जो अपने को समझते हैं ना कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, गुरु हैं, विद्वान हैं, सबके सामने माया आती है। जो नियमों का पालन करते हैं, जिनमें दृढ़ता रहती है, वे बच जाते हैं। जो नियमों का पालन नहीं करते, अहंकार आ जाता है, वे माया उनको जकड़ लेती है, अपने बंधन में ले लेती है। माया बहुत प्रबल है, अहंकार नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचारी यदि रहना चाहते हैं तो ब्रह्मचारी के संग में रही। भोगी व्यक्ति का संग करेंगे तो आपके मन में विकार आ जाएगा। भागवत में भी मना किया गया है, ब्रह्मचारियों का, गृहस्थों का संग क्या करना, भोगियों का संग क्या करना है। वो तो जहां रहेगा वहां भोग की चर्चा करेगा, आपके मन में विकार आ जाएगा। ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचारी के संग में रहे। वैरागी बनना है, वैरागियों के संग में रहे, भोगियों के संग में नहीं। यदि आप अपने को समझिए कि आपके अंदर यदि दृढ़ता है तो आप कहीं भी जाकर के प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी विदेशों में गए और प्रचार किए, उनके सामने में आया, लेकिन उनकी अवस्था हो चुकी थी। प्रभुपाद जी तो संसार को भोग चुके थे, वो जानते हैं कि संसार क्या चीज है, लेकिन उनको तो माया फिर कुछ नहीं कर सके। लेकिन जो युवक हैं, युवा अवस्था में है, जैसे इस प्रसंग में आप सुन रहे हैं ना, भरत जी का और शकुंतला का आपस में आकर्षण हो गया। ये भी युवक, वो भी युवती, आकर्षण हो गया। स्वाभाविक है, इस संसार का ऐसा स्वरूप है। जहां आग और घी रहेगा वह घी जरूर पिघलेगा। दोनों का प्रति आकर्षण हो गया, विवाह हुआ दोनों को। कर्ण मुनि उनको सौंप दिए, लेकिन उसके बाद अपने घर आ गए तो भूल गए। माया जो है मनुष्य को अंधा बना देती है, उल्लू बना देती है, बंदर बना देती है, और कुछ भी बना डालेगी। और जिसके ऊपर काम का बेग आएगा, याद रखिएगा, कोई भी प्राणी उसका शत्रु बन जाएगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। स्त्री के अंदर भी काम की प्रबलता आएगी, वो अपने पति का भी जान मार सकती है थोड़ा सा सुख के लिए, भाई को भी मरवा सकती है, तमाम प्रमाण है। वो कुछ भी कर सकती है थोड़ी सी सुख के लिए। क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समुझु तई सम की कोटि, ऐसी माया की प्रबलता है। विश्वामित्र जी हैं, चाहे और भी जैमिनी हैं, पराशर मुनि हैं, तमाम लोगों का उदाहरण दिया गया है शास्त्र में, माया जो माया के शिकार बन गए। क्यों? कि माया तीनों गुणों का प्रभाव माया के ऊपर है, तीनों लोकों में उसका राज्य है, और भगवान तीनों गुणों से परे हैं। तो भगवान ने कहा है, यह मेरी माया है, बहुत बलवान है, मेरे शरण में आओ और दृढ़ता से पालन करो, मैं जो कहता हूं मेरे अनुसार चलो, तब तुम माया से पार पा जाओगे। आयाति की प्रसंग में बोला गया है, वेदव्यास जी ने कहा है कि माया माया पर वही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, नहीं तो ऐसे कोई माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। उदाहरण दिया गया है, जैसे बांस का पौधा है, बांस के पौधे हैं, बहुत से बांस लगे हुए हैं, आप सारे बांस को काट दीजिए, नीचे से जड़ से काट दीजिए तो ऐसे दिखेगा कि यहां कोई भी पौधा नहीं है, लेकिन जड़ तो उसका पृथ्वी के अंदर है। पुनः आषाढ़ में जब जल बारिश होगी तो जड़ क्या होगा, पनपेगा। तो कहने का भाव कि काम का जो वेग है सभी मनुष्यों के अंदर है, वासना सबके अंदर है, लेकिन वो सुप्त है, समय पा करके वही जागृत हो जाती है, माया को देखकर उसको उत्तेजना हो जाती है। देखिए, लेकिन कृष्ण भावना से देखिए, जिनके संयम में दृढ़ता नहीं होगी कभी भी नहीं, चाहे गुरु हो चाहे चेला कोई भी हो, वो ऐसे पार नहीं पा सकते। अगर किसी स्त्री ने आपके मन को छीन लिया और आपका किसी स्त्री के साथ संग हो गया तो आपका जितना भी पुण्य है सारा पुण्य खत्म हो गया। विश्वामित्र जी बार बार पुण्य इकट्ठा करते थे, मेनका से संग किए उनका पुण्य खत्म, फिर पुण्य एकत्रित किए, माने पुण्य एकत्रित करते थे। आप जो चाहते हैं कि हम प्राप्त कर ले वो चीज आपको नहीं प्राप्त, इसलिए तो इंद्र विदा करता है माया को, जाओ इनके तपस्या को भंग करो, कहीं हमारा स्वर्ग राज न ले लें। तो माया यदि स्त्री का संग हो जाए तो आप ब्रह्मचारी हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य जो है बिल्कुल एकदम वो खंडित हो गया, माने आप में कोई दम नहीं है, आप केवल दिखावा मात्र के ब्रह्मचारी हैं, दिखावा मात्र के सन्यासी हैं, दिखावा मात्र के गुरु हैं, आपके नियम में कोई दृढ़ता नहीं है, आपको माया कभी पछाड़ सकती है। इस गिरुआ कपड़े का बहुत बड़ा महत्व है प्यारे बंधु, ये त्याग का सूचक है, गिरुआ कपड़ा त्याग का सूचक है। इस कपड़े को पहन करके यदि आप गलत कार्य करेंगे, मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, तो हमारी जो हमारा जो संघ है, हमारी जो संस्था है, वो कलंकित हो जाएगी। इसलिए हम सभी को बचना चाहिए, एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, प्रभुपाद जी ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। तो माया वासना सबके अंदर है, तो जब भगवान की कृपा होगी तभी वह वासना जा सकती है, ऐसे नहीं जा सकती, उनकी कृपा चाहिए। तो उनकी कृपा होगी कैसे, जब आप अहंकार से रहित होंगे, अपने संयम में दृढ़ रहेंगे तो भगवान की कृपा होगी। नमाचार्य हरिदास ठाकुर को माया कुछ नहीं कर सकी, और जिस उपासना में आप लगे हों तो उसमें आप दृढ़ रहिए ना, दृढ़ता से पालन करिए, कोई खेल नहीं है ब्रह्मचारी रहना सन्यासी रहना, दृढ़ता नहीं है, हमें दम नहीं है, दिखावा मात्र में हम खाली हैं, अंदर से खोखला है, मेरा कहने का भाव है, इसलिए उनका पतन हो जाता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। प्रभुपाद जी लिखते हैं भाष्य में कि बृहस्पति जैसा ज्ञानी है माया का शिकार हो सकता है, तो हम सब जो संसार के प्राणी हैं, सामान्य प्राणी, वो क्यों नहीं शिकार हो सकते, फिर क्या कहना है। इस जगत में माया का राज्य है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे बरसात हो रही हो, चारों तरफ पानी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप जल से अपनी रक्षा कर लेते हैं कि नहीं, गाड़ी में रह जाइए, गाड़ी में रहकर रक्षा कर लेते हैं, घर बना करके रक्षा करते हैं, घर के अंदर है, आपके चारों तरफ बारिश हो रही है, अब बारिश के अंदर ही है लेकिन घर के अंदर है। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन उसके ऊपर कीचड़ का जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पानी जाता है छलक जाता है, वैसे कृष्ण भावना से हम सब भावित रहें, विवेक से काम लें। हम लोग माया के अंदर हैं, लेकिन माया के अंदर रहते भी यदि आप भगवान की सेवा में संलग्न हैं तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। मन को खाली नहीं रखना चाहिए, खाली मन शैतान का कहा गया है, खाली मन रखेंगे तो वही गंदी बात सोचेगा। और पतन का आजकल सबसे बड़ा कारण मोबाइल हो गया है, इंटरनेट सबसे बड़ा पतन का कारण है, जिसमें सारी दुनिया भरी हुई है, और वासना की काई, वासना सबके अंदर है, जैसे बारिश में ईंट पर काई जम जाती है ना, काई जो जिसमें हरितमा रहती है, ऐसे काई जम जाती है, वो काई जल्दी नहीं छोड़ती है, तो विषय रूपी काई हृदय में जमी हुई है, ऐसे नहीं जाएगी। जब हम पूरा दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति करेंगे, साधु संग करेंगे, सुनेंगे,
तब चेतना की शुद्धि होगी, तो फिर माया का प्रभाव नहीं हो आएगा। अब जैसे उल्टी करते हैं, जैसे आप भोजन करते हैं और इसके बाद आप उसको वोमिटिंग करते हैं, मान लो वोमिटिंग आपको उल्टी हो जाए, तो क्या उसको आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, आपको घृणा आएगा। तो उसी प्रकार से बोला गया है कि चबाए हुए को चबाना, यही है भौतिक जीवन। पुनः पुनः चर्वित चर्वणाणाम, चबाए हुए को चबाना ही भौतिक जीवन है, यही माया का प्रभाव है। हम लोग हर एक जोनियों में बच्चे उत्पन्न कर चुके, सब कुछ किए, अंत में आपको फाइनल चांस मिला है कि साधु संग करिए, तप करिए और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लीजिए और अपना जो धाम है वास्तविक धाम, बैक होम, बैक टू गॉड, उस धाम की ओर यात्रा कीजिए। हमारा अंतिम स्टॉपेज वही है। और यदि आप ये चाहते कि नहीं, हम वहां नहीं जाना चाहते हैं, तो ठीक है, उद्धव जी कहे ना, भगवान से कहे कि प्रभु मुझे ब्रज का ही लता पता बना दीजिए, यदि मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, मैं गोकुल में निवास करूं, आपका दर्शन करता रहूं, या हनुमान जैसे, उद्धव जैसे, आप फिर उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे, ये कामना भगवान से मांग सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी साकेत धाम नहीं गए, जहाँ कथा होती है वहीं रहते हैं और वहीं सुनते भी हैं, वहां आ जाते हैं किसी न किसी रूप में, सुनते हैं। प्रभुपाद जी का भी कथन है, ये मत सोचिए कि यहां दो चार लोग कथा में बैठे हैं तो खाली बस, नहीं, कह के कथा सुनने के लिए देवता भी आते, यहां देखिए भरा हुआ है समाज, उनको दिखता है, तो देवता जहां नित्य कथा होती है वहां सभी लोग आते हैं। भगवान की माया का कभी उपहास नहीं करना चाहिए, प्रणाम करके हट जाना चाहिए, भावना अमृत में भावना के दृष्टिकोण से देखनी चाहिए, मर्यादा में हम सभी को रहनी चाहिए और मन का कंट्रोल स्वयं आपको करना है। गुरु जी दीक्षा दे दिए, सब कुछ दे दिए, चलना है आपको। जैसे पंडित जी आपका विवाह करा दिए, पति पत्नी में संबंध हो गया और आप में झगड़ा हो रहा है, तो पंडित जी क्या करेंगे? पंडित का तो जी का तो जो काम था तो कर दिए, पंडित जी के यदि फिर शरण में जाएंगे तो आपको उपाय बताएंगे हैं। गुरु को जीवन समर्पित होना चाहिए, गुरु महाराज आपको गाइड करेंगे, याद रखिए गुरु हैं, अच्छे भी गुरु हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। बाद में जीव को ज्ञान होता है, माया जीव को पछाड़ रही है और दृढ़ता नहीं रहेगी तो पछाड़ती रहेगी, फिर भी हम लोगों को भगवान के कथनानुसार दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मर्यादा में रहकर चारों आश्रम के लोगों को कृष्ण भावना से युक्त रहना चाहिए, तो ऐसे समाज में शांति बनी रहेगी, हमारे अपने समाज में भी शांति बनी रहेगी, जितने भी हमारे अधिकारी हैं सब प्रसन्न रहेंगे। यदि आप मर्यादा का उल्लंघन कर दिए तो सोचिए कि हमारी संस्था बदनाम हो जाएगी, प्रभुपाद जी का नाम खराब होगा, इसलिए मर्यादा में रहे। मर्यादा में रहने का मतलब है धर्म की दायरा में रहें, धर्म के घेरा में रहें, उसका नाम है मर्यादा। धर्म नियमों के अंदर रहें उसको मर्यादा बोलते हैं, उसे शांति बनी रहती। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा? कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते। सभी लोग ज्ञानी हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ बोलिए
प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि इस कथा में आपने बहुत बार दृढ़ता के बारे में बताया कि नियम का पालन दृढ़ता से करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो पतन हो जाएगा, तो ब्रह्मचारी के लिए ये दृढ़ता कहाँ से आएंगी और एक गृहस्थ के लिए ये दृढ़ता कहाँ से आएंगी?
के संग से सब कुछ आता है, साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र का है, साधुओं का संग करिए, वैष्णव का संग करिए, वो जो कहते हैं उनकी बात को आचरण में लाइए, जैसे पारस पत्थर उसी को सोना बनाएगा जिसमें कपड़ा नहीं लपेटा रहेगा, कपड़े को सोना नहीं बनाता, जैसे बिजली की तार है खुलम खुला तार रहेगी आपको करंट लगेगी, लेकिन उसे कवर लगा दिया जाएगा तो करंट नहीं लगेगी। आप साधु संघ में आ रहे हैं लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जो कहा जा रहा है उस वास्तव उस नियम को नहीं निभा रहे हैं, खाली संघ में आ रहे हैं, लेकिन अंदर से आप खोखले हैं, अंदर से आपकी दृढ़ता नहीं है, साधु संघ से ही दृढ़ता आएगी। किसी में सत्वगुण का प्रभाव रहता है, रजोगुण का प्रभाव रहता है, तमोगुण का प्रभाव रहता है। आज तक जिसका भी जीवन सुधरा है साधु संघ से सुधरा है, चाहे नारद जी हो, चाहे ध्रुव जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग भी आए हैं तो साधु संघ से ही कृष्ण भावना में आए हैं। लेकिन बात यह है कि हम लोग दृढ़ता पूर्वक नए नियम का पालन करते हैं, उसके साथ हम खिलवाड़ करते हैं, खाली ऐसे ही कपड़ा पहन लिया है, अपना कर्तव्य को हम नहीं निभा रहे हैं, तो आपकी कमजोरी है, दूसरे की कमजोरी नहीं, इस टाइम अपने आप की कमजोरी है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, मन को बुद्धि से सुधारो, विचार करो कि हम क्या करने जा रहे हैं। कोई कर्म करने जाते हो तो उसे विचार करो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम तो बहुत भयावह होगा, बस रुक जाओ मत जाओ आगे। लेकिन आप उसको भी नहीं मानेंगे तो भगवान की आज्ञा को तो आपने उल्लंघन कर दिया। दृढ़ता पूर्वक तो भगवान बोलते हैं 16 माला जप करना है, करना है, 4 नियम है उसका पालन करना है, लेकिन हम पालन नहीं कर पाते हैं, तो आपकी कमजोरी है ना, आप में कोई दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता साधु संघ से आएगी, सब कुछ आपको साधु संघ से मिलेगा, ऐसे नहीं प्राप्त हो सकता। अहंकार में कोई रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता। अगर मन पर कंट्रोल नहीं है, आप मन में भी रहिएगा, वहां भी आपका पतन हो जाएगा। माया सब जगह है, माया का प्रभाव हर एक जगह है, वहां भी आपका पतन हो जाएगा। मन जैसा शत्रु, मन जैसा मित्र कोई नहीं है। इसलिए मन को अपने जप द्वारा, श्रवण कीर्तन करने से मन शुद्ध हो जाता है, तो दृढ़ता पूर्वक रहनी चाहिए। वही दृढ़ता आप खो देते हैं, ढिलाई कर देते हैं, माया का पूरा प्रभाव आ जाता है, आपकी भावना में परिवर्तन आता है, विस्मय भावना हो जाती है। दृढ़ता के लिए भगवान खुद बोल रहे हैं, गुरु का भी आदेश है सब। आप अग्नि का दीक्षा लेते समय हम सब अग्नि में हवन देते हैं, 4 काम से सबको वंचित रहना है, सबकी दीक्षा हुई है। जैसे विवाह होता है तो आपकी 7 भौंरी लगती है, 4 बर की और 3 दुल्हन की, तो उसमें सतर्क कराया जाता है कर्मों के बारे में, आपको एक साथ देना है, पति का साथ देना है, पत्नी की साथ देनी है। लेकिन अगर कोई पालन न करे तो किसका दोष है? नियम में कोई ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। अगर नियम में ढिलाई है आपका, दृढ़ता नहीं है, तो आपका आध्यात्मिक जीवन के साथ खिलवाड़ है, आप अध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकते। साधु संघ से दृढ़ता आएगी, स्वयं अपने आप को भी पता चल जाता है। यदि आप अपने संयम में दृढ़ हैं, आप जप करते हैं, तो आपका मन खुद बता देगा कि हमारी भक्ति कितनी है, आप कितना जप कर रहे हैं। और मान लीजिए कि आपका मन विषय का चिंतन कर रहा है, ये तराजू है, समझ जाइए कि हमारा मन 0 पॉइंट पर है। बार बार आपके मन में स्त्री आ रही है या आपका मन भ्रमित हो रहा है, तो समझिए कि हमारी भक्ति अभी 0 पॉइंट पर है, हम भक्ति में अभी उन्नति नहीं किए। जीव जागा, जीव जागा का मतलब क्या है? जानिए तब ही जीव जग जाएगा, जब सब विषय विलास विरागा, विषयों से वैराग हो जाए, मन भगवान में लग जाए, तब समझना चाहिए कि जीव जगा हुआ है। आत्मज्ञान तो होना चाहिए ना, खाली आप सुनते हैं कि यह है वो है, इसके बाद करने में आपका दम नहीं है। इसलिए अच्छे वैष्णव के संग में रहेंगे तो संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु ने तो यही आदेश दिया, वैष्णव का संग करना चाहिए, संग से सब कुछ सुधर जाएगा, चिंतन करने से सुधर जाएगा। जितने भी साधु यहाँ सन्यासी ब्रह्मचारी बने हैं, सब सत्संग से ही बने हैं। सत्संग में ऐसी शक्ति है जो समाज की बुराइयों को बुराइयों से दूर कर देता है। दृढ़ता पूर्वक हम लोग को अपने पालन करना है बस। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। बृहस्पति जी
जी
जो देवताओं के गुरु हैं और अपने भक्ति मार्ग में सबसे उत्कर्ष पद पर हैं, वैसे ही नारद जी सबसे उत्कर्ष पद पर हैं और चंद्रमा अन्य युग में जो कि कलि युग से बिल्कुल भिन्न था और सतयुग और द्वापर में इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, तो कलयुग में इस तरह की घटनाएं घटना और इस तरह के विचार आना एक तो सामान्य जैसा हो गया, वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन ये तो सामान्य हो गया जबकि उनकी ये स्थिति हो सकती है। तो कलयुग जो कि कलह का ही युग है, इसी तरह का युग है जिसमें इसकी प्रधानता है, तो ये तो सामान्य बातें हो गई। और एक तो एक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये है कि भागवत में इस तरह के प्रसंग कैसे आते हैं, किसके लिए आते हैं, उसका उद्देश्य क्या है?
बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जो बृहस्पति जी हैं, नारद जी हैं, चाहे ब्रह्मा जी, इनके माध्यम से भगवान ने जगत को शिक्षा दिलवाया है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि मनुष्य को इस स्तर पर कभी नहीं आना चाहिए। और भगवान ने कहा है कि जो मेरा दास है अब मेरे शरण में आ जाता है, अगर उसे कभी गलती हो भी जाए तो मैं स्वतः उसको संभाल लूंगा, दूर कर दूंगा। उदाहरण देने के लिए उन लोगों का आदर्श उदाहरण दिया गया है। नारद जी की रक्षा फिर किसने किया? भगवान ने किया। ये अहंकार नहीं करना चाहिए। शिक्षा लेने के लिए बड़े लोगों का दृष्टांत दिया गया है। चंद्रमा ने गलती किया, लेकिन फिर भी चंद्रमा ब्रह्मा जी की मंत्रिमंडल में है कि नहीं? चंद्रमा बनना भी कोई साधारण बात नहीं। गलती किया तो गलती का परिणाम देखो, चंद्रमा में आज भी कलापन है। अभी गौतम ऋषि ने जो मृक्षाला से मारा था उसके काले काले दाग दिखाई दे रहे हैं, देना है कि नहीं? चंद्रमा में देखिए, अगर बड़े बड़े भक्तों से कोई गलती हो भी जाती है तो उनके माध्यम से दृष्टांत दिया जाता है कि दूसरों को संभल करके रहना चाहिए। अब ब्रह्मा जी भी सरस्वती के पीछे दौड़े तो उस शरीर को तुरंत त्याग दिए जो इस कुहरा के रूप में, कुहासा के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि उनको तो सृष्टि की रचना विस्तार करना था। है जो कुहासा है ब्रह्मा जी की रचना है, शरीर को त्याग दिए। तो उसे ये सिद्ध हुआ कि मतलब अपने पुत्री के पीछे किसी को प्रति मतलब बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। उन लोगों को माध्यम बना करके समाज को हमें शिक्षा दी गई है और उनकी जिम्मेवारी भगवान खुद लेते हैं। अगर हमारे भक्ति से कुछ भक्त कुछ गलती कर भी देते हैं तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन वो जो कार्य करते हैं, ब्रह्मा बनना कोई साधारण बात नहीं है, नारद भी बनना, शिव जी भी बनना कोई साधारण बात नहीं है। अब शिव जी मोहनी को देख करके वही भ्रमित हो गए, तो भगवान ने क्यों ऐसा किया? उन्होंने मतलब ये सिद्ध किया गया है, उनको एक दृष्टांत खड़ा करके भगवान ने जगत को शिक्षा दिया है। जैसे रावण है, मान लीजिए रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान का पार्षद है, जय विजय पार्षद है, लेकिन फिर भी उसको रावण का रोल करके समाज को दिखाना है कि ऐसा कर्म करने से ऐसा फल मिलता है, इसलिए कुमार पर पांव नहीं रखना चाहिए। उनसे ऐसे लोगों से समाज में शिक्षा ली जाती है, इसके लिए उदाहरण दिया गया है। नारद जी वैसे नहीं है, और विश्वामित्र क्या बोलते हैं, ये बृहस्पति जी भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन अगर किसी के अंदर अहंकार आ जाए, अभिमान आ जाए, तो तीनों गुणों के अंदर देवता हैं, तो माया कभी भी उन्हें पछाड़ सकती है, इसलिए अहंकार में नहीं आना चाहिए। उदाहरण स्वरूप दिया गया, उनको शिक्षा लेनी चाहिए। हम लोगों को शिक्षा देने के लिए उन बड़े बड़े लोगों का दृष्टांत दिया गया और जिनकी रक्षा स्वयं भगवान ने किया है। इंद्र को तो इंद्र ने भगवान को गाली दिया, देखिए गोवर्धन पर्वत में इंद्र ने भगवान को गाली दिया, सब कुछ एक ग्वारिया है माने जंगल में गायों को चराने वाला, मेरा पूजन बंद करा दिया, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूं। जल बरसाया, पूरे ब्रज में एकदम तहलका मचा दिया। भगवान ने इंद्र का तो सामना किया कि राजगोवर्धन को धारण करने की रक्षा किया, लेकिन इंद्र को पद से नहीं हटाया। अगर चाहते तो उसका पद छीन सकते थे, तो कहां से जल बरसाता हो, लेकिन फिर भी अपने पद पर हैं। मनवंतर में अलग अलग इंद्र बनते हैं, लेकिन हैं अभी भी हैं वे। तो भगवान चाहते तो हटा सकते थे। बड़े बड़े लोगों से भी गलती हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी स्वतः भगवान लेते हैं, कहने का मतलब यह है, और भगवान क्षमा कर देते हैं। अगर किसी से कुछ गलती हो गई तो यही समझ जाना चाहिए कि माया की ये सब प्रबलता है। भगवान की इतनी माया प्रबल है कि साधारण जीव को भी घसीट सकती है, पछाड़ सकती है, इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अब ये नहीं कि हम जैसे अब नारद जी हों चाहे कोई, ये अचानक घटनाएं हो जाती है, और भरत जी का जो शकुंतला के साथ हुआ है वो क्षत्रिय हैं, फिर भी अचानक ऐसी बातें आ जाती है तो भगवान उसका जिम्मा ले लेते। हम लोग को शिक्षा देने के लिए बातें कही गई है, सावधान रहना चाहिए। उन लोग का जो दृष्टांत दिया गया है शिक्षा लेने के लिए, एक्चुअली वो लोग वैसे होते नहीं है, शिक्षा लेने के लिए बातें कही गई। हरे कृष्ण।
राजा दुष्यंत का और शकुंतला का संवाद है, इसमें कुछ हम लोगों ने पहले बचपन में सुना था कि शकुंतला को क्यों नहीं पहचाना दुष्यंत ने।
शकुंतला तो पहचानती थी,
शकुंतला को फिर बाद में क्यों नहीं पहचाना दुष्यंत ने, जब उनके साथ बच्चा भी पैदा कर दिया, सब कुछ किया, फिर उन्होंने इनकार कर दिया, पहचाना नहीं, तो किस कारण से ऐसा हुआ? और कोई कारण है कि मेरे समझ से आप जानते होंगे
उसमें? वो ये तो माया की प्रबलता से भूल गए, वो राजा थे भूल गए, लेकिन आकाशवाणी हुई कि ये आपका पुत्र है, उनको याद दिलाया गया आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, आपने शकुंतला का संग किया है, इसलिए ये जो पुत्र है ये भरत, ये आपके ही पुत्र हैं, माने शकुंतला के जो पुत्र थे जो भी है, तो आकाशवाणी ने सिद्ध कर दिया, शिक्षा दिया, पुनः भरत जी को याद दिलाया कि ये आपकी पत्नी है, ये आपके पुत्र हैं, इन्हें आप स्वीकार करें। तो मनुष्य जब अपने कर्तव्य को भूल जाता है तो देवता लोग चाहे वैष्णव लोग उसे याद दिलाते हैं, तो बाद में स्वीकार कर लिए कि हमसे गलती हो गई, तो भी एक माया का प्रभाव है।
मैंने कहीं सुना कि दुर्वासा जी का श्राप भी था उनको।
हाँ, तो बोला ना, कोई ना कुछ कारण होता है, कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे कारण होती है। उस आपके बारे में इतिहास हमको पूरा जानकारी नहीं है, अगर जानकारी रहती तो मैं कह दिया होता। कुछ कोई कोई घटनाएं घटती है तो उसके पीछे अभिशाप या कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता, तभी ये घटनाएं घटती। नरहरी जी कुछ कहना चाहते हैं? दीजिए,
कुछ कहेंगे?
ठीक, सब मिला जुला कर यही बात है कि भगवान की माया बहुत प्रबल है, अहंकार में नहीं रहना चाहिए, नम्र बन करके विनम्रता पूर्वक एक दूसरे को मान सम्मान देते हुए हम लोग को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगद गुरु शिल प्रभुपाद की जय।